आमयिं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मम चरणं प्रपन्ना। अठ मुखे दिए दीते, जाप दिए दीते, श्री श्री बृहद भगवतामृतम सप्तम अध्याय द्वितीय भाग सप्तम अध्याय। कृष्ण का ब्रज गोपियों के प्रति क्या भाव है इसको वो दिखला रहे हैं। गत कल हम इसके संबंध में बतलाया था मैंने। पहले कृष्ण अपने आप गोपियों से साक्षात रूप में बातचीत की और पीछे उन्होंने जो उद्धव को कहा था और उद्धव ने गोपियों के पास जाकर के उनके भावों को देखा और जो अपना संदेश दिया था उद्धव को उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। पहले यह समझना चाहिए ये सनातन गोस्वामी पाद किनके लिए ये सब रसायन का संचयन कर रहे हैं। कुछ उत्तम अधिकारियों के लिए, साधारण अधिकारी तो समझ ही नहीं पाएंगे। पहले साधक किसको कहते हैं पहले ये समझिए। हम लोग भक्ति के साधक अभी हैं कि नहीं हैं पहले इस चीज को समझिए। हम लोग क्या हैं? एक तरह से साधका आभास यदि कह दिया जाए तो कोई दोष नहीं। साधक आभास, अभी शुद्ध साधक नहीं है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, सबके लिए नहीं किंतु अधिकांश साधक नहीं, साधक आभास कहे जा सकते हैं। वी थिंक दैट वी आर नॉट ऑल साधक, प्योर साधक। वे मे बी कॉल्ड साधकाभास, बट वी थिंक दैट वी आर डिवोटी। बट एक्चुअली वेन यू विल थिंक यू विल कम टू कंक्लूजन दैट रियली वी आर नॉट साधक। जब कोई भक्त छात्र संघ में गुरु की महिमा जानकर गुरु से नाम और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात में संबंध ज्ञान के साथ में भजन करने लगता है, उस समय उसके अनर्थ रहेंगे, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति तक भी रहेंगे, किंतु वो साधन क्या करेगा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, इसका साधन करेगा तब साधक कहलाएगा। ऐसे नहीं, संबंध ज्ञान के साथ भाव भक्ति के लिए जब साधन करेगा तब वो साधक कहलाएगा। जो ये जानता ही नहीं है अन्नाभिलाषिता शून्य का तात्पर्य, जानता ही नहीं है अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, और अनुकुल्य कृष्णानुशीलन किसको कहते हैं, कृष्ण के प्रीति के लिए कायिक वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार की चेष्टाएं और प्रतिकूल वेश्याओं में उनको दूर रखने की चेष्टा, और यहां तक कि भाव भी उनके लिए हो, तब तो ये साधक है। उसमें उसकी कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाएं कभी भी अपने लिए नहीं होगी, तब तो वो साधक की कुटी में आएगा और कृष्ण प्रीति के लिए सब कुछ करेगा। हो सकता है कि अनर्थ रहे, कोई हर्ज नहीं, तब तो वो साधक कहलाया। जब वो समझेगा कि भाव किसको कहते हैं और उस भाव को पाने के लिए साधन करेगा, तब तो साधक की कुटी में आएगा। और ऐसे साधक लोग भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी हैं। तीन प्रकार के साधक, उत्तम वाले भी अधिकारी हैं, वो साधन के ही। वो किस चीज के हैं? उत्तम वाले भाव की अभी हो सकती है, जो प्राप्ति कुछ हुई है, स्वरूप सिद्धि भी हुई है, प्रेम की सिद्धि के लिए वो लोग साधन करते हैं। इसलिए पहले हम लोग समझ बूझ करके जब साधन करेंगे तब तो साधक की कोटि में आएंगे। अभी उद्देश्य हमारा निश्चित नहीं है, संबंध ज्ञान भी नहीं है, अनर्थ भी भरे पड़े हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति लोग भाव के लिए साधन करेंगे। नित्य सिद्धस्य प्राकटंग हृदि साध्यता, नित्य सिद्ध जो भाव है अपने हृदय में, वो भाव प्रकट करने के लिए जब इंद्रियों के द्वारा किस चीज का उत्तमा भक्ति जो है उसका साधन करेंगे अपने अधिकार के अनुरूप, तब उन्हें साधक कहते हैं। ये साधक भी दो प्रकार के हैं, वैदिक भक्ति के साधक और रागानुगा भक्ति के साधक। रागानुगा भक्ति के साधक जगत में विरले हैं, बहुत विरले हैं। वो अपने आप उनका साधन होता है जो कि रागानुगा है। उनको लोभ है, लोभ ही दो प्रकार का है, एक शुद्ध लोभ और एक लोभाभास। जगत में अभी जो हम देखते हैं लोभाभास है। बिल्ल मंगल को जब लोभ हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, और इस आंखों से कोई भी सौंदर्य नहीं देखेंगे, सौंदर्य देखेंगे भाव नेत्र से कृष्ण का। तब उनको साधक कोटि में लाया गया। इसलिए इन सब को विचार करके जो लोग इनको सुनेंगे, जिनको लोभ हुआ है भक्ति में, गोपियों जैसी हमको भक्ति चाहिए, सेवा कृष्ण की चाहिए, उनके लिए जिस समय में ऐसा लोग होगा उस समय में अपना सेव्य नहीं बनेगा जो दूसरी हमारी सेवा करे, सारी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करेगा और दूसरों से भी कराएगा। इसलिए यहां पर सनातन गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत से इन श्लोकों को उद्धार कर रहे हैं और कह रहे हैं, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितृन प्रतिमा वह गोपीनां मद्वियोगावधिं मत्संदेशैर्विमोचय। कृष्ण गुरुजी के पाठशाला में पढ़कर उज्जैनी से भी लौट करके आए हैं, और आते ही जमुना जी को देखा और उत्तर की दिशा में अपनी अट्टालिका पर, वसुदेव महाराज की अट्टालिका में चढ़ करके ऊपर देखा और भावों से गदगद हो गए, आंखों से आंसू झरने लग गए, कुछ विकल से हो गए। हमारे विरह में न जाने ब्रज की क्या अवस्था होगी, और पशु पक्षी बोलते नहीं, कोयल नहीं कुहकती, मोर नहीं नृत्य करते, गायें घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, तो पुरुषों की तो क्या दशा होगी। इसलिए ऊपर में अट्टालिका के ऊपर में चढ़कर कुछ व्यथित विरह व्यथित होकर के, किसका विरह? गोपियों का विरह। पहले हमने कृष्ण कृष्ण के प्रति गोपियों का विरह का वर्णन किया सनातन गोस्वामी। अब कृष्ण के विरह का, कृष्ण का भी को भी विरह होता है। सब व्यक्त जितने भी जगत में भक्त हैं उनके लिए वो सोचते हैं, विशेष करके जो शरणागत भक्त हैं, जो सचमुच में शरणागत हैं, उनकी प्रार्थना भी सुनते हैं। यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये प्रश्न किया, जब कृष्ण वृंदावन के विलास में ही तन्मय रहते हैं तो भक्तों की प्रार्थना कौन सुनता है? कहते हैं कि हाँ, विलास में मैं तराने पर भी अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से उनकी प्रार्थना को भी सुनते हैं। किसी भी भक्त को भूलते नहीं, वृंदावन के उनके रसिक और भावुक भक्त हैं, गोपियां हैं, किंतु और लोगों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, किसी की भी उपेक्षा नहीं करते, है ना? तो गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, माता पिता के प्रति, भक्तों के प्रति कृष्ण की क्या भावना है, इन श्लोकों को मैं, ये पहले गोपियों के प्रति उन्होंने दिखलाई, अब ब्रजवासियों के प्रति विशेष करके फिर गोपियों के प्रति उद्धव को जो संदेश दे रहे हैं उसमें ये बतला रहे हैं इस चीज को। कृष्ण भी बड़े विरह में दुखी रहते हैं गोपी, तब उस समय में उद्धव जी उनको खोजते खोजते आए और खोजते खोजते अट्टालिका पर पहुंचे और कृष्ण को विरह में व्यथित देखा। साथ ही साथ कृष्ण इनको देख करके और भी भाव में विभोर हो गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहने लगे, प्रिय उद्धव गच्छ ब्रजम, ब्रज में जल्दी से जल्दी तुम ब्रज में जाओ। हे सौम्य, सौम्य ने चारु दर्शन, बहुत ही उद्धव जी भी कृष्ण के समान ही सुंदर थे, कृष्ण के समान ही बहुत ही सुंदर थे। सोम माने होता है चंद्र, और चंद्र से सोम से सौम्य, चंद्र जैसे सुंदर दिखता है, सुशीतल होता है, वैसे ही इनका दर्शन है। इनको देखते ही भक्तों का हृदय मधुर और स्निग्ध हो जाता है, कृष्ण के समान इनका भाव भी वैसे ही, इसलिए इनको सौम्य कहा। हे उद्धव, पितृ न, हमारे जो पिता हैं, प्रतिमा भाव, हमारे पिता हमारे विरह में बड़े दुखी हैं, हमारी मैया हमारे विरह में बड़ी दुखी हैं। कभी कभी ब्रज से संदेश आते हैं कि तुम हमारे यदि लड़के होते तो हमें छोड़कर के मथुरा में नहीं जाते। यशोदा जी इस प्रकार से खेद में किसी के हाथ से संदेश भेजती हैं और कृष्ण क्या कहते हैं, आमेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलायरी। मैया तुम ऐसा मत कहो ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं इसलिए वहां चला गया, ऐसा यदि कहोगी तो मैं मारा गया, इसलिए फिर ऐसा मत कहना, मैं जल्दी से तुम लोगों के मित्र वसुदेव और देवकी इनको सांत्वना दे करके, उनके सारे लड़के मारे गए हैं और बलदेव जी भी हम यदि नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे वहां, बलदेव जी की प्रतिज्ञा है यदि कृष्ण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारे बाबा तो वसुदेव जी ही, नंद ही हमारे पिता है, मैया हमारी यशोदा है, हमारे पिता ने तो बाल्यकाल में ही हमें छोड़ दिया, तो जो पालन पोषण करता है वो भी पिता है, तो इन्हीं से हमें लाड प्यार मिला, हम इन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए कृष्ण तुम यदि नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और यदि जबरदस्ती हमें रखा जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए बलदेव को यहां रखने के लिए कुछ दिन, जब पुत्रहीन देवकी और वसुदेव को कुछ संतना मिल जाए इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहां हूं, मैं जल्दी से आने वाला हूं। बस इसी आशा तंतु, तंतु मैंने क्या, पत्नी तंतु, जैसे कमल की डंडी की तंतु होती है उसी पर उनके प्राण टिके हुए हैं। कृष्ण ने ये कहा है जैसे मैं आऊंगा, इसीलिए बस इसी पर उनके आशा तंतु के ऊपर में उनके जीवन निर्भर हैं। इसलिए प्रतिमा बहो उनको धैर्य धारण कराओ, उन्हें सांत्वना दे आओ। चतुरता के साथ में हम जैसे उनको प्रणाम करते थे वैसे ही तुम भी साष्टांग प्रणाम करना, उनके चरणों को छूना और नह पित्रो हमारे पिता। हमारे क्यों कहा, कृष्ण के पिता हैं न किसके पिता हैं, बलदेव जी भी उनको पिता मानते हैं। आदर्श सूचक में भी किसी को पिता के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। और उद्धव के लिए करें तुम्हारे भी माता पिता कौन है, नंद बाबा यशोदा मैया है, इसलिए हमारे प्रतिम आवह। प्रतिम आवह आओ माने क्या कहते हैं, चतुरता के साथ कुशलता के साथ में जैसे तैसे उनकी प्रति को उत्पन्न करो, उनको सांत्वना दो, उसको कहते हैं आवह। चतुरता माने क्या, हमारे पिता माता को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है, हमारे बिना उनकी सांत्वना नहीं हो सकती, मैं जानता हूं। मैं जब तक उनकी गोदी में नहीं बैठूंगा उनको सांत्वना नहीं हो सकती, तभी तुम भी उसी चतुरता से उसी प्रकार से उनके चरण छूना, वैसे ही पिताजी कहना, वैसे ही प्रेम से उनके साथ में वार्तालाप करना, जैसे मैं उनके पास ही हूं, इस तरह से चतुरता से करना। कहने के बाद में बस अपने असल संदेश पर आए, गोपीनाम मद वियोगावधि, माता पिताजी को हमारा वियोग का दुख है, वो सह रहे हैं कुछ कुछ, मैयांती तो हो गई है किंतु मरी नहीं, पिताजी के भी ऐसी स्थिति है, हमारे वियोग में एकदम तड़फ रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, दुबले पतले हो गए हैं, यशोदा जी के सामने नहीं आते, तुमने हमको हमारे बेटे को सोने के आभूषणों पर बेच दिया, उसको नहीं लाया, इस डर से अपनी पत्नी के पास यशोदा जी के पास में नहीं जाते, किंतु उन लोगों से भी बहुत अधिक वियोगावधि, उनको वियोग का दुख है, किंतु गोपियों को वियोग की अवधि, वियोग की अवधि माने क्या, अनुराग की सीमा को भी पार कर जाता है, अधिरूढ़ की भावना पर मोहन भाव धारण करता है, गोपियों को मोहन से भी अधिक बढ़ जाती है, श्रीमती राधिका जी मादन की स्थिति में आ जाती है, उस समय में चित्र जल्प और दूसरी दूसरी प्रेम ये सब उद्भास्वर इत्यादि बहुत से सब भाव होते हैं वियोगावधि, यहां तक कि प्रलय भी स्थिति को पार कर जाती, प्रलय माने होता है मूर्छा, एकदम मूर्छित हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है। मत संदेश पे उनसे चतुरता मत करना, खबरदार तुमको बतला देता हूं, पिताजी से चतुरता से व्यवहार कुछ कर सकते हो क्योंकि अवधि नहीं है, किंतु इनसे चतुरता मत करना, कोई भी बात चतुरता से उनको समझाने की चेष्टा मत करना, क्यों उनका वियोग और बढ़ जाएगा, सह नहीं सकेंगी। मत संदेश ही इनको, तो हमारा संदेश जो तुमको दे रहे हैं जैसा का तैसा कह देना बस, और कुछ हम तुमको ये संदेश दे रहे हैं। कृष्ण ने उनकी झोली में बहुत से संदेश दिए, जैसे संदेश की मिठाई होती है 10-20-25 एक किसी चीज में दे दिया, कृष्ण ने एक ही उपदेश संदेश नहीं दिए, बहुत प्रकार के संदेश। देखो पहले ये कहना, जब इसे भी उनको सांत्वना ना तो ये संदेश कहना, उसके बाद में ये कहना, फिर ये कहना, पर एक एक दूसरे से संदेश गुढ़ गुढ़ से गुढ़तर गुढ़तम संदेश को उसमें दिया है। ऐसे ये संदेश हैं, कृष्ण ने एक भाव से कहा, उद्धव जी ने कृष्ण के जितने हृदय की जो संदेश है उसको समझा कि नहीं, कृष्ण जिस तरह से रो रहे हैं और रो करके अपने उस संदेश को गोपियों के लिए भेज रहे हैं। उद्धव जी सचमुच में उन भावों को वैसे ही उपलब्धि कर और गोपियों से बोले संभव पर नहीं था। शब्दों को तो कहा, जैसे एक रोइए मत, कृष्ण ने जिस तरह से कहा, जिस भावना से, उनकी टोन में क्या स्वर छिपे थे, उसको वो नहीं कर सकते, रोइए मत कह सकते हैं। तो कृष्ण जिस भावना से कहा, उद्धव जी अपनी भावना से समझे, अपने अधिकार के अनुसार में समझे, और गोपियों ने समझा किस रूप में, उद्धव जो कहा उस रूप में नहीं। वो शब्द में जो अभिव्यंजित अर्थ था, टोन छिपा हुआ था, उसमें एक ही प्रकार से नहीं, बहुत प्रकार से समझा उन लोगों ने। कभी खींचती हैं, कभी मानती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी सोचते हैं जा अब हमारे प्रियतम आ रहे हैं, कई आ गए, अभी आ रहे हैं, अब जीवन भर नहीं आएंगे, आशा भी उनकी छूट गई। एक एक श्लोकों से उद्धव समझ नहीं सके जो हमारे ये कहने का संदेश गोपियों को प्राप्त होकर उनके मन में कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं, उद्धव नहीं समझ सके। यदि समझ लेते तो वो वृंदावन से फिर लौट करके मथुरापुरी में नहीं जाते, समझ नहीं सके। इसलिए कृष्ण ने जो शब्द कहा बस उसी शब्दों को दोहराया, किंतु गोपियों ने उसका गुढ़ से गुढ़तम भाव समझा। अब सनातन गोस्वामी जी अपने टीका में बतला रहे हैं, एवं साक्षात एकेन, पहले कृष्ण साक्षात रूप में गोपियों से कहा, न पारे हम निर्बद्ध संयुजान सुसाधु कृत्यम विबुदा जुसा पिव मा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संविश तद्व प्रति जातु साधु। कीर्तन कर दे रही क्यों नाय सब मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, बोलो कि है ये अरे लाइट नहीं है। श्रीमद्भागवत के में बतलाया गया, कृष्ण ने अपने मुख से गोपियों की प्रशंसा की, उनके मुख पर ही, यह हमारा तुम्हारा यह मिलन है, परम निर्मल है, वेद की स्मृति की और सब लौकिक रीतियों से सब प्रकार से ही ये निर्मल है, कहीं भी इसमें दाग नहीं है। इसमें परपति का कोई संबंध ही नहीं है, व्यभिचार का इसमें कोई गंध नहीं है, बल्कि संसार में सबसे उन्नत चीज है। इसलिए मैं तुम्हारा मैं चिरकाल के लिए ऋणी हूं। मैं कोई भी कुछ उपकार दे करके तुम्हारा पत्ते उपकार करके तुम्हारा इस ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, इत्यादि कहा। अब ये पहले श्लोक में आए हमारे भक्तों के द्वारा उपकार, कल बतलाया था ना? कौन? रूप मंजरी इत्यादि के द्वारा। अब उतना तो नहीं किंतु उद्धव जी के मुख से, अब उद्धव जी को उन्होंने कहा, एक होता है प्रत्यक्ष एक परोक्ष, गोपियां नहीं है, कौन है? उद्धव है। और उद्धव से गोपियों की प्रशंसा करते हुए गोपियों के इन भावों को कि कितनी उन्नत है भाव ये, और गोपियां कितनी उन्नत हैं ये बात। अच्छा, जो साक्षात रूप में कर रहे हैं और परोक्ष रूप में जो उद्धव को कर रहे हैं, दोनों में से कौन उन्नत है? परोक्ष वाला। इसमें उसके लिए कहे, अरे तुम हमारी बड़ी प्यारी हो, इसमें कुछ कपटता हो सकती है, सबको कह सकते हैं, किंतु जो दूसरों के माध्यम से जो उन्नत भक्त है उनसे जो उनकी तारीफ जो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ये हृदय के अंतिम भाव से वो कर रहे हैं। इसलिए परोक्ष वाला जो है और भी प्रमाणिक है। इसलिए पहले कृष्ण ने जो गोपियों से साक्षात रूप में कही, अब उसको अब उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजा था, अब ये बतला रहे हैं। दाढ़ विशेष दृढ़ता के लिए, अपने पहले हुए जो गोपियों से कहा है उसी की ठीक अब दृढ़ता कर रहे हैं, अपने भक्तों से उनकी प्रशंसा करते हुए, जो गोपियों का भाव कितना उन्नत और कितना निर्मल है। विश्व में ऐसा कहीं किसी भी साहित्य में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो गोपियों जैसा प्रेम। इसी को इस श्लोक से आरंभ करके और आठ श्लोक बतलाएंगे, श्रीमद् भागवत के ही लेंगे, जो उद्धव को बतलाया था उसको यहां पर बतला रहे हैं। उसमें से गोपी का विषय असाधारण प्रसाद और अनुरूप व्यवहार संपादन निमित्त भगवान स्वयं ब्रज में गमन नहीं कर करके मथुरा से नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपने उद्धव को भेज रहे हैं, बलदेव जी को भेज रहे, कृष्ण ये कृष्ण क्यों नहीं गए? वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? दो अंगुल। कितना दूर है? पांच माइल या दो अंगुल? एक दूसरे के पास ही हैं। भातरौल मथुरा की सीमा और उधर से भातरौल वृंदावन की सीमा, दोनों एक रत्ती भर का भी थोड़ी सी दूर है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से आसमान और जमीन का अंतर है, बहुत बड़ा भारी अंतर, भावना के दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर। इस भावना के अंतर को वही समझेगा जो ऐसा भजन पारायण है वो समझेगा। तो कृष्ण यहां से नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? गैया चराने के लिए तो कहां आ जाते थे, एकदम वृंदावन की सीमा थी, तो क्यों नहीं वृंदावन में ये जा सकते थे? गोपियों के पास में क्यों नहीं गए? दूसरी बात, यदि नहीं गए तो कभी कभी आने जाने में क्या फर्क पड़ता था? कभी कभी जाते फिर चले आते। अच्छा, तो आकर के फिर राके नहीं गए, दूसरों से संदेश भेजवाने की क्या जरूरत है? खुद आकर के संदेश देकर के उनको सांत्वना देकर के चले जाते। ये सब प्रश्न है जो साधारण आदमियों के लिए नहीं, ये भजन राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए है। तब यही समझिए कि दंत वक्र जी, पहले तो जरासंध जी ने आक्रमण कर रखा था, यदि वो जान जाए जे कृष्ण के पिता नंद हैं तो क्या करेंगे? यहां पर कोई किला नहीं, कोई कुछ नहीं, सैनिक नहीं, कुछ दिन हमें मार करके इनको बर्बाद कर देगा, इसलिए नहीं आ रहे। दूसरी बात, कालजवन और बड़े बड़े असुर लोग हैं, इनका भी अभी वध करना है। वसुदेव जी यदि वहां पर रहे और अक्रूर ये महाराज उग्रसेन और कृष्ण न रहे तो क्या होगा? एक दिन में दुरुस्त कर देगा, इसलिए वहां से नहीं छोड़ रहे। किंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण हैं, वह है प्रेम का। यदि कृष्ण ब्रज में आते हैं तो गोपियों का ग्रह लाख गुना और अधिक बढ़ जाएगा जो मथुरा में है। क्या कहा, क्या समझा? अभी कृष्ण मथुरा में हैं तो उनकी छिपी हुई आग है, विरह की आग। यदि मथुरा से वो चले जाते हैं वृंदावन में एक दिन के लिए भी, तो उनकी विराग्नि कैसी होगी, संभाल नहीं जाएगी, एकदम प्रदीप्त होकर के जल उठेगी, धप धप कर जलेगी। अधिक दिन जाने के लिए जितने अधिक दिन रहेंगे उतने ही जलेगी। क्यों? यदि आग में कुछ देने के लिए लकड़ी या कोई चीज नहीं है तो आग अपने आप शांत रहेगी। यदि आग के लिए कुछ ईंधन हो तो क्या होगा, ईंधन देने से वो बढ़ेगी। तो कृष्ण ईंधन स्वरूप अभी हो रहे हैं, उनको देखते ही विरह की आग और धधक उठेगी। ये प्रेम सरोवर में कृष्ण ने दिखलाया। उस समय में राधा जी उनके पास में हैं और विराग्नि में एकदम तड़पने लगी, मूर्छित हो गई कृष्ण की गोदी में, जो कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। इसलिए कृष्ण ने देखा जी हम ऐसे नहीं सांत्वना दे सकते हैं, ना काठ लकड़ी रहेगी, ईंधन नहीं रहेगा और अपने आप वो प्रशमित रहेगा। उसमें विरह में भी हमारा दर्शन करके बड़ी खुश रहेंगी, कभी खाएंगी पिएंगी श्रृंगार कर, और हम रहने से और उनकी विरह व्यथा बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए यदि किसी का लड़का है वही कहीं चला जाए उसके माता पिता भूल जाते हैं, और बीच में वो लड़का आ करके माता पिता भेंट करके और फिर चला जाए तो क्या होगा, उनका जो पहला विरह था वो सब। बहुत एक जगत में इसका उदाहरण नहीं है, तभी एक छोटा सा प्रादेशिक उदाहरण हमने बताया। इसलिए कृष्ण स्वयं ब्रज में नहीं जा करके उस विरह सागर में जो जल रही है, तड़प रही है गोपियां, उनको देखने के लिए कहां थे, रखन जन्न कौन है, पैर कौन छू रहा है, क्यों संदेश भेज रहे हैं, खुद नहीं गए, निज दर्शन रूप आशा तंतु। ये क्या संदेश दिया, मैं अभी जो मथुरा के कुछ कार्य अवशेष हैं इसको करके मैं कल या परसों तक जरूर आ जाता हूं, आ रहा हूं, आ गया समझो, आया मैं ऐसा समझिए मैं आई गया, बस ये संदेश दिया। और गोपियां का कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, जब उन्होंने कहा तो जरूर आएंगे, कृष्ण अपने बातों से कभी भी मुकर नहीं सकते, इसलिए वो जीवित हो रही है, नहीं तो कभी की मर जाती। इस आशा तंतु किसको कहते हैं, मृणाल तंतु होती है, मृणाल माने कमल, कमल की डंडी में जो तंतु होते हैं बहुत कमजोर होती है, तभी छीड़ आशा एक संवाद के द्वारा संतना देने के लिए ब्रजजनों के आरतीहारी भगवान केशव एकांत अनुरक्त अपने भक्त के जो उद्धव जी हैं, महामंत्री उद्धव जी हैं, उनको ये संदेश। उद्धव माने क्या, उद्धव उत्सव से, ये उत्स से उद्धव बना है, उत्सव, उत्सव माने आनंद की छलकती हुई आनंद, छलकता हुआ आनंद उत्सव कहलाता है। जिसके दर्शन से, जिसके साथ वार्तालाप करने से आनंद की धारा बहने लगी उसको कहते हैं उद्धव। हे उद्धव, तुम ब्रज में गमन करो। श्लेष पूर्वक ये कह रहे हैं, तुम जगत के उत्सव स्वरूप हो, उत्सव आनंद के उत्सव हो। ये बृहस्पति के, किंतु बृहस्पति के दूसरी तरफ से गुरु हैं, शिष्य होने पे प्रेम के गुरु होंगे, शिक्षा के हो सकते हैं शिष्य हो, किंतु उस परमार्थ के ये गुरु हो सकते हैं। बल्कि इसको ये समझिए, उद्धव जी के अंश कला ये बृहस्पति जी हैं, किंतु कहा गया है कि उनके अंश से देवता के रूप में आए हैं। अतः तुम वहां जाकर के उपस्थित से महान उत्सव होगा, नंदबाबा को अपने आप सांत्वना हो जाएगी और गोपियों में भी आनंद का उत्सव हो जाएगा, आनंद छलकने लगेगा। आप वहां पर जाओ तो इसलिए वहां जाकर के हमारे माता और पिता हमारे वियोग में जो तड़प रहे हैं, प्रतिमा वह प्रतिविधान कीजिए, आवा विधान करें। मूल में जो न माने हम लोगों के, ये बहुवचन है, इसके बहुत से कारण हैं। माता पिता के प्रति आदर सूचक होने से बहुवचन, अथवा बलदेव और कृष्ण बहुवचन, दो वचन, और बहुवचन में ये उद्धव भी इसमें आ जाएंगे। उतावी यशोदा मैया को और नंद बाबा को देखेंगे तो क्या बतलाएंगे, कहेंगे पिताजी मैया माता जी कहेंगे। जैसे हम अपने मित्र की माँ को मैया, साधारण रूप में भी वृद्धा महिलाओं को हम मैया कहें, बंगाल में तो छोटी छोटी लड़कियों को भी माँ बोले, सब लोग माँ कहते हैं। इसलिए तुम पुत्रवत, पुत्र की भांति जाना, जैसे हम उनके पुत्र हैं और हम जैसा उनके स्नेह के साथ में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से चतुरता से कुशलता से बात करना, उनके चरणों में पिताजी आपके लिए मेरा प्रणाम है कह करके साष्टांग प्रणाम करना। तो ऐसे जो शोक में संतप्त है, कैसे नंद बाबा संतप, अपने संदेश में कृष्ण जी कह रहे हैं, जो संदेश वाहक है माता जी को, तो ये हमारा संदेश देना, हम दोनों भाई आ रहे हैं, अकुला करके मरो मत। देखो हमारे बीरे में गैया तड़प रही हैं और बछड़े दूध नहीं पीते हैं, घास नहीं चरती गैया। हमारे पिताजी को कहते हैं हमारे जो बड़ी प्रिय गैया है उनको जरा देखेंगे संभालेंगे, हमारे आने के पहले मरने जाए, मैं बहुत जल्दी आ रहा, पिताजी से ये कह देना, पिताजी की हमारी बातों का स्मरण कराना जैसे उन्होंने किया था। नंद बाबा क्या कर रहे हैं, कृष्ण के प्रेम में विवल हो गए उद्धव को देखते ही और कहने लगे, मैं इस बिरह से पार जाने के लिए घर में रह नहीं पाता, घर में रहने से कृष्ण की के बछड़े खेलने के खिलौने, उनकी बंसी छोटी सी, उनकी झींगुली पीले वस्त्र छोटे छोटे देख करके अब रहा नहीं जाता। यशोदा जी की अवस्था देख करके घर में रहा नहीं जाता, इसलिए मन को बहलाने के लिए मैं जमुना के किनारे चला जाता हूं, जो वहां पर शांति से कुछ समय व्यतीत करके लौट आऊंगा। किंतु वहां जाने पर जितने भी पेड़ हैं वो पेड़ कृष्ण की गाथा पूछने लगते हैं, कृष्ण के छोटे छोटे चरण के चिन्ह वहां पर हैं, उन पेड़ों पर चढ़ करके खेल करते थे वो सब आ जाते हैं, उनके चरण चिन्ह हैं। मैं कभी कभी कृष्ण और बलदेव को अपने कंधे पर लेकर के जाकर के उनको स्नान कराता था। ये सब वहां पर स्मृति आ जाने से मुझे रहा नहीं जाता, अब मैं कहां जाऊं, जरा गोवर्धन में जाकर के अपने मन को बालाऊं। तो वहां पर तो और भी गोवर्धन को जिसको धारण किया था, ऐसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें कि वो स्नान नहीं करता, ऐसे कोई वृक्ष और लता नहीं है जहां पर कि वो नहीं जाता, इसलिए वहां पर मैं कहीं मुझे सांत्वना नहीं। और हा कृष्ण कह करके फिर रो करके एकदम उचित हो गया। तो ऐसे उनको चतुरता के साथ में उनको समझाना। यहां चतुरता के सहित का विचार का क्या है, आवह का, आव माने चतुरता के साथ में क्या तात्पर्य है। मैं जानता हूं कि मेरे बिना उनको कोई भी सांत्वना नहीं दे सकता, मैं जानता हूं तुम्हारे जाने से भी नहीं होगा, दूसरों के लिए दुसाध्य है। तो अभी तुम हमारे पास बहुत दिनों तक रहे हो, हमारे स्वभाव को जानते हो, हमारे स्वभाव के समान ही उनसे जाकर निष्कपट रूप में कभी उनकी गोदी में बैठ सकते हो, पिता पिताजी संबोधन कर सकते हो, इस तरह से हमारे संदेश को उनको देना, अतः चतुरता के साथ संपन्न करना। यदि ये समझो मैं एक तुच्छ हूं, उद्धव के लिए करें, यदि तुम ये समझो पिताजी के सामने उनको क्या मैं सांत्वना दे सकता हूं, और सब कुछ में बात ऐसी ही थी, यदि ये समझो मैं एकदम तुच्छ बराक हूं, हमारा शब्द है जो ऐसे महापुरुष को जो आपके पिता माता है उनको सांत्वना दे सकूं, ये संभव नहीं। उसके लिए कृष्ण कहते हे सौम्य, हमारे जैसे ही, सम माने सौम्य, तुम्हें हमारे जैसे, उनको देख करके ही कृष्ण हमारे पिताजी को कुछ सौम्य से भाव से उनकी प्रति की संभावना हो सकती है। यहां विशेषण, यहां इस विशेषण का तात्पर्य सौम्य का यह है, सहज सरल कोमल रीति से द्वारा प्रतिविधान करना, जैसे चंद्र स्वाभाविक रूप में सरल सौम्य मृदु कोमल सरस और स्निग्ध है, ऐसे ही तुम भी हो, तुम जाकर के इसी रूप में सरल सहज स्वभाव से हमारे पिताजी को प्रतिविधान करना। नहीं, अथवा हे उद्धव, हमारे पिताजी जब देखेंगे हमारे समान ही तुम्हारा सांवला रूप है, हमारे ही वस्त्र पहन करके जा रहे हो, अपना पीताम्बर दे दिया था, अपनी ओढ़नी दे दी थी, केवल बंसी तो थी नहीं जो दें, और बाकी उन्हीं जैसा रूप सांवला, तो हमारा तुम्हारा जैसा एक ही समान रूप है, देख करके पिताजी को बड़ा आनंद होगा। इसलिए उद्धव जी को यहां पर प्रोत्साहित कर रहे हैं सौम्य कहकर। और देखो गोपियों के संबंध में बतला रहा हूं, उनको हमारा ये संदेश, नंद बाबा के लिए संदेश नहीं दिया, उनको पिताजी कहना, उनको समझाने के लिए चातुरी इत्यादि करना, और गोपियों के लिए क्या, तुम हजार लाख चातुर करेगा उनका विरह बढ़ जाएगा, उनका विरह केवल शाम में हो सकता है, किस तरह से, हमारे संदेश से ही हो सकता है। इसलिए हम जैसे आक्षरिक रूप में जो जो कर रहे हैं उसको नोट कर लो, और उसी को केवल कहना, अपनी तरफ से कोई चतुराई और शब्द इत्यादि से मत समझाना। अर्थात हमारे विरह में गोपियों की जो को मनस्ता जो विराग्नि है, अपनी चतुरता के द्वारा समझाने की चेष्टा मत करना, हमारा संदेश केवल सुनाना, इस पहले पहला कहना, फिर दूसरा कहना, उसे नहीं हो तो तीसरा कहना, जितने मैं दे रहा हूं उनको तुम कहना। किंतु हुआ क्या, उद्धव जितने कह रहे हैं उनका उनका विरह और बढ़ रहा है, यहां तक कि जीने की जो आशा थी जी कृष्ण आएंगे वो भी समाप्त हो गई, जीवन की आशा तंतु जो थी वो क्या है, श्लोक याद है, धस्त जीव कोशम, उनके जीवन की जो आशा थी ये भी समाप्त हो गई। इसीलिए अब आगे आएगा, नलिनाभ पदार बिंद क्या है, आहुष्यते, गोपियों ने कहा था, क्रोधित होकर के कहा, वीरस तप्त होने के बाद बड़े क्रोधित होकर के समृद्ध पूर्वक उनको बताया कृष्ण के प्रति। शिक्षा देने आया है हमें, हमें शरणागति की शिक्षा दे रहे हो और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बात कर रहे हो। हमारा अपने आप तुम्हारे प्रति जो भाव है बाल्यकाल से, जब लंगूठिया याद थे तभी से तुम्हें हम जानते हैं, स्वाभाविक स्नेह। और हमको तुम योग की अभ्यास करने की शिक्षा दे रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि देखो हमारा जो उनके हृदय में जो विरहाग्नि है वो शांत नहीं होगी तुम हजार चेष्टा करने पर भी। यद्यपि माता पिता प्रभृति कथनचित प्रतिविधान समर्थ के पारो, तुम्हारे बातों से माता पिता को कुछ सांत्वना मिल जाएगी, मैया अब कल परसों में आ जाएंगे, कृष्ण ने कहा है हम जरूर आएंगे, ये सब तुम कह सकते हो, और भी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हो प्रीति की, उनकी हो सकती है, संभव है, गोपियों का नहीं होगा। तथापि गोपियों की आधि विमोचन, गोपियों का ये जो आधि है मैंने रोग है इसको दूर करने में समर्थ नहीं हो गए। कृष्ण ने कोई श्लोक बोला उद्धव जी को संदेश के लिए देने के, उसमें उन्होंने दिया, उद्धव के समझ में नहीं आया होगा, प्यारी गोपिया तुमको याद है मैं सबके साथ एक एक कृष्ण के रूप में तुम लोगों के पास में था और तुम्हारी सेवा की, याद है किस तरह से तुम्हारे हमने मुख को से पसीने के बुंदों को पूछा, और जो क्रीड़ाएं की तुमको याद नहीं है, तुमको याद नहीं होगा जिस समय गोपियों के पति लोग उनको रोक रहे थे और जिसमें उनको रोका, जो घर के अंदर में थी वहीं से विरह की अग्नि में जल करके सबसे पहले हमारे पास में वो पहुंची, उसमें से तुम लोगों में से कोई होगा, याद है। उद्धव जी क्या समझेंगे इस चीज को, ये कौन सी गोपी आई और कृष्ण से पहले आकर के मिली, फिर रासलीला में सम्मिलित हुई। कहते हैं जैसे वो जो तुम लोग ये मत समझो जो स्फूर्ति है, बल्कि साक्षात रूप से ही हमारा तुम्हारा मिलन है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, सब समय तुम्हारे पास में, निकट में, तुम्हारे हृदय में ही हूं। तुम उसको स्फूर्ति मानती हो, इस तरह से उस संदेश में दिया था। इस तरह से इसके द्वारा नंद जसोदा की अपेक्षा भी 7:10 हो गया बराबर, अपेक्षा गोपियों का ये जो विरह बहुत अधिक है, बहुत अधिक। आज यहीं तक रहे, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।